ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஸ்லோக் நம்பர் 5 एक साथ गान करेंगे.
किमीह किम काय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम् किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च अथ क्वैश्वर्ये त्वयि अनवसर दुस्तो हतधिय कुतर्कोयं कांशि मुखरयति मोहाय जगतः.
चौथे श्लोक में जो विचार किया गया था कि कई तर्कवादी ऐसे हैं, श्री पुष्पदंत जी कहते हैं कि मैं उनको मंद बुद्धि कहता हूं, प्रलपन करने वाले कहता हूं, वादी. आपके तत्व को क्यों वादी, क्यों प्रलपन करते हैं? क्योंकि आपके तत्व को जानते नहीं है. परमात्मा को न जानना कोई गलत बात नहीं है, कोई नहीं जानता है, पर न जानने का प्रयत्न न करना, जानने का प्रयत्न न करना, वो हमारा गुनाह हो जाता है. तो एक तो आपको जानने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं. देखिए, कोई चेष्टा कर रहा है परमात्मा को जानने की, और उस अवस्था में कुछ परमात्मा के बारे में अज्ञान या गलत भी बता देते हैं तो वो क्षम्य है. क्यों? क्योंकि वो अभी जान रहा है, उसे पूरा पता नहीं है. पर ये क्षम्य क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जानने का कोई भी प्रयत्न मैं इन वादियों में, यानी प्रलपन करने वालों में, तर्क वालों, तर्क यानी क्या? देखिए कि परमात्मा का जो अस्तित्व है, परमात्मा है, उसे नहीं मानते. हमें सिर्फ इतना ही करना है कि परमात्मा है, अस्थि, बस इतना ही मानना है. परमात्मा के होने में, अस्तित्व में श्रद्धा या विश्वास, बस. आगे का काम सब वेद है, शास्त्र है, ईश्वर है, गुरु है, ये तीन संभाल लेते हैं. हमें क्या करना है? सिर्फ, और इसी को आत्मकृपा कहते हैं. चार प्रकार की कृपा जब कहते हैं, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा. आत्मकृपा अंतिम नहीं आती है, आत्मकृपा पहले आती है कि पहले अपने आत्मा पर, खुद पर कृपा कीजिए. कैसे? परमात्मा को मानने वाली कृपा. कोई भी, जो भी परमात्मा, 33 करोड़ देवता में से जो भी परमात्मा के लिए आपको अगर ऐसा होगा, अस्थि, कोई शक्ति है, कोई परम तत्व है, जगत है तो कोई बनाने वाला है, तो अपना काम बन जाएगा. पर जो नास्तिक है, जो आपके अस्तित्व को नहीं मानते, वो मन बुद्धि वाले तर्क तो करते हैं, पर तर्क की भी सीमा के आगे जाते हैं. देखिए, ज्ञान में जब प्रवृत्त होते हैं तो ज्ञान की हमारी सीमा कहाँ है? कहाँ जाके हम रुकते हैं? एक भी प्रवचन आपने यहाँ सुना ना, या परमात्मा के मंदिर में गए, तो वो आपको कहाँ तक ले जाएगा? आपको पता है उसकी अवधि? आपके खुद के स्वभाव तक, एक दिन, या कोई भी जन्म में, ये जन्म या कोई भी जन्म में, वो कहाँ जाके रुकेगा? ये जो धक्का लग गया है, एक बार भी मंदिर में जाके मूर्ति को प्रणाम किया, तो वो धक्का लगा हुआ आपको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये ब्रह्म हूं, वहां तक पहुंचा देगा. पर जो नास्तिकवादी परमात्मा के बारे में तर्क करने का शुरू करेगा, तो धक्का तो उसको भी लगेगा. क्योंकि देखिए, सत्ता और स्फूर्ति तो आस्तिक और नास्तिक दोनों में वो परमात्मा की ही है. तो वो शक्ति इतनी है, प्रबल है, तो ये प्रबल शक्ति जब परमात्मा को अस्थि कहती है कि हाँ परमात्मा है, तो वो अहम ब्रह्मास्मि तक धक्का लगा के ले जाती है साधक को. पर कोई अज्ञानी में, नास्तिक में ये शक्ति आ गई और वो कहता है परमात्मा नहीं है, तो वो परमात्मा की शक्ति कहां तक उसे ले जाती है? तर्क तक नहीं, कुतर्क तक ले जाती है। और वो कुतर्क कहां है? वो अंतिम अवधि, नास्तिक की अंतिम अवधि कहां है, उसकी थोड़ी बात बताई गई है। तो कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके बारे में कुतर्क करने वाले हैं, तो हम सब कहेंगे कि भाई हम तो परमात्मा के बारे में कभी तर्क भी नहीं करते, कुतर्क की तो बात ही नहीं है, तो हमें श्री पुष्पदंत जी ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो कहे कि भाई ऐसा कुतर्क कभी कोई कर्म फल के हिसाब से, या देखिए ऐसे व्यक्तियों के बीच आ गए, ऐसी परिस्थितियों के बीच आ गए कि वहां कुतर्क करने वाले के साथ हमें रहना ही पड़ा। तो इस प्रकार की परिस्थितियां में, इस प्रकार की जो स्थिति आ जाती है, अगर रहना ही पड़ा तो तब आपके मन को आपको कैसे संभालना है? तो कुतर्क जान लीजिए, अज्ञान को भी जान लीजिए क्या है, क्योंकि उससे बच सके। तो कोई अगर ऐसा कुतर्क करने वाला हो तो समझ लीजिए कि ये कुतर्क करने वाला है, तो हम उससे दूर रहेंगे या हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। दूसरा श्री पुष्पदंत जी बता रहे हैं कि कभी साधक को ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कुतर्क करते हैं? तो श्लोक में देखेंगे किमी ह किम काय ह, जो चौथे श्लोक की बात थी कि परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण, ये जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण एक ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, वो महाशिव है जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है। तो बोलेंगे कि अगर परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता है ऐसा आप कह रहे हैं, तो वो सृष्टा की सृष्टि की रचना में चेष्टा कौन सी है भाई? किस प्रकार, कौन सी चेष्टा से परमात्मा ने यह जगत उत्पन्न किया? पहले तो परमात्मा की चेष्टा के बारे में आपने कुतर्क किया। किमी ह किम काय ह, कौन से शरीर से, कौन सा शरीर, जब परमात्मा ने जगत की उत्पत्ति की तो उन्होंने कौन सा ऐसा शरीर, क्योंकि जगत इतना बड़ा है, और जो कर्ता होता है वो कारण से तो बड़ा ही होगा ना, जो कार्य जो है वो कारण से, कार्य तो सूक्ष्म ही होगा क्योंकि कारण बड़ा होने से ही वो कार्य को जन्म देने लगेगा। तो ये जो सृष्टि इतनी बड़ी लगती है, तो उससे बड़ी काया क्या परमात्मा ने उत्पन्न की थी? किम काया हा? कौन सा उपाय यानी उपादान कारण, किस प्रकार परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना की? अच्छा, रचना करने के लिए आधार चाहिए, कोई घाट देना है, कोई सुनार कोई घाट देता है कुछ अलंकार को, सोने को, तो उसके पास यहाँ एक टेबल रहता है या वो एरन रहता है निहाई, और निहाई के ऊपर सब घाट देते हैं। तो परमात्मा ने ये सचराचर सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए आधार किसका लिया और उसकी सामग्री कौन सी है, मटेरियल, और जो सामग्री से उन्होंने ये त्रिभुवन की रचना की। कहते हैं अचिंत्य सामर्थ्य वाले अतर्क्य ही त्वई अनवसर दुस्तो हतधियः। हतधियः यानी उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि इतने अचिंत्य सामर्थ्य वाले आपके विषय में भी बिना अवसर, देखिए हम कभी किसी को मिलते हैं या बैठे होते हैं ऐसे ही, तो बिना अवसर बिना की बातें हम करने लगते हैं, कोई सार नहीं होता है, यानी ये सब बातें हैं वो बिना सार की है। यहाँ कोई प्रकाश तो बात में से प्रकाश तो उत्पन्न नहीं होता है, घर्षण ही केवल उत्पन्न होता है, ये कोई सार नहीं है ये बात में। देखिए ये लक्षण होना साधक का बहुत जरूरी है। साधक को जब, बराबर ध्यान से सुनना, साधक को जब ऐसी बातें होने लगे ना तो कंटाला आना ही चाहिए, आपको अंदर से जी मचलना ही चाहिए कि अब कब छुटू, अब कब ये बात बदलू, ऐसा आपको होना ही चाहिए भीतर से, तो ही आप छूट सकेंगे। ये साधक का लक्षण है, जब भी कुछ कुतर्क होता है परमात्मा के बारे में, तब ये पुष्पदंत जी हैरान हो गए, हम कहते हैं ना कंटाल गए, ऐसे वो हो जाते हैं। और ये कुतर्क कई मंदबुद्धि मनुष्यों ने ये जगत को ठगने के लिए, ये जो कुतर्क है वो मंद बुद्धि मनुष्यों को मुखरयति वाचाल बनाते हैं। वाणी का जो मौन जो है, अगर वेदांत के हम साधक हैं तो सबसे पहले वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये जो उपाधि है उसमें सबसे पहला जो साधन है वो क्या करना है, तो मौन का साधन है। देखिए मौन तय करेंगे कि मौन रहना है तो हम कम बोलेंगे, मौन रहना है ऐसा कोई ने निश्चय किया तो वो आदमी मौन नहीं रह सकता और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। पर हम मौन रहना क्यों कहते हैं कि आपको अगर हम मौन ही रहना कहे तो 10 घंटे में से आप 5 घंटे बोलेंगे, क्योंकि मौन है तो घड़ी घड़ी बोलने से मौन याद आता रहेगा, इसलिए मौन कहा है। तो ये वाणी का, और हमेशा सोचिए कि एक की एक बात में 2 या 3 या 4 बार तो नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो भीतर बहुत समय भीतर सोचना पड़ता है और करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है और करनी पड़ती है। तो हमेशा अपनी जो वाणी जो है उसके ऊपर एक फिल्टर लगा दीजिए और मन को एक सजेशन दे दीजिए कि एक बार मैंने बात की रजिस्टर नहीं हुई तो दूसरी बार की, पर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार एक ही एक बात, देखिए ये आदत हो गई है, इसमें हमारा कुछ चलता भी नहीं है, वी आर नॉट एट फॉल्ट, ये आदत बनी गई है। अब वही आदत को आप देखिए और वापस जाइए आपके स्वभाव में, एक बार कहा किसी ने नहीं सुना, दूसरी बार बातें खत्म हो गई, फिर भी जो काम नहीं हुआ तो फॉरगेट इट, क्योंकि ये परम तत्व की बात जान लेने से आपको ये निर्णय में तो आप आ ही जाएंगे कि काम हुआ या नहीं हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो परमात्मा में ही सब कुछ अनुस्यूत है। तो साधक को एक और बात जाननी जरूरी है कि कोई भी बात के लिए निवृत्ति, नैष्कर्म्य सिद्धि में कहा है सुरेश्वराचार्य ने, निवृत्तिम अपि मृदनाथ सम्यक बोध प्रवृत्तिवत, क्या है, जो ज्ञानी जन होते हैं जो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं उनके लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक ही है, एक ही है, यानी प्रवृत्ति करनी है तो करनी है पर करनी ही है ऐसा नहीं है, और निवृत्ति निवृत्त होना है तो होना है पर होना ही है ऐसा नहीं है, बोलने का मन हुआ बोलेंगे, चलने का मन हुआ चलेंगे, पर चलते चलते बीच रास्ते में बैठने का भी मन हुआ तो वो बैठ भी जाएंगे, उस फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ चलते हैं तो उठा नहीं सकते और उठ के चले हैं तो आप बिठा नहीं सकते। हाँ तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति में ज्ञानी जन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि जो भी कुछ है वो परमात्मा में ही हो रहा है, वो हो समझ गए हैं। तो ये जरा कुतर्क को हम देख ले कि किमी है किम काय है, भाई हमें जवाब आप दे ही दीजिए कि परमात्मा में से उत्पन्न हुआ है तो कैसे हुआ है, हमें कोई ऐसी चीज उत्पन्न हुई हुई दिखाइए जो वो चीज में से ही उत्पन्न होती है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जगत को क्या कहते हैं, परमात्मा का ही विवर्त कहते हैं, वो एकदम अंतिम बात है, पर जो भी कुछ जगत में है सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा कहते हैं, सब कुछ परमात्मा है ऐसा कहते हैं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उत्पत्ति परमात्मा में से बताइए और उत्पत्ति होने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही रहे। मोर है, मोर का अंडा है, उसमें से मोर का बच्चा निकलेगा तो 2 हो गए, उत्पत्ति मोर में से ही हुई है पर क्या है, 2 है। जो कुम्हार है घड़ा बनाता है मिट्टी का, तो वो बनाता है तब कुम्हार और घड़ा 2 हो गए, बनाने वाला अलग, निमित्त और जो उपादान कारण जो है मिट्टी और जो घड़ा बन गया कार्य वो उससे अलग है। तो क्या ऐसे परमात्मा है और कार्य अलग है, तो बोले कार्य और कारण यहां ऐसी उत्पत्ति है जो कार्य और कारण से अलग नहीं है, तो भी आप कैसे बता सकते हैं। तो मुंडक उपनिषद बहुत सुंदर दृष्टांत देखे ये बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब हमारी साधना शुरू होती है तब एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, वो आत्मा में से परमात्मा में से भाई परमात्मा ने कामना की, सो कामयत बहुस्याम प्रजा येति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम सर्वमसृजत तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, भाई वो परमात्मा अकामयत परमात्मा जो कामना कर ही नहीं सकता है उसने वो कामना की, सृष्टि की यानी कि परमात्मा ने संकल्प किया, पर ये परमात्मा का जो संकल्प है वो कैसा है? जैसे हम रात को सो जाते हैं और स्वप्न सृष्टि में आप रात को संकल्प करके नहीं सोचते कि आज ये स्वप्न, आज यहाँ जाएंगे, आज स्वप्न में इसे मिलेंगे, नहीं, वो कैसा है? पर स्वप्न का संकल्प कैसा है? वही समय आ जाता है और घट जाता है, और ये स्वप्न सृष्टि एक ही ऐसी है जो घटना घटने के बाद पता लगता है कि ये हो रहा है। जागृत में आप कुछ भी बोलना भी चाहे तो भीतर तो अंदर हो ही जाता है, विचार तो आ ही जाता है कि ये विषय पे ये व्यक्ति के साथ हम बोलेंगे, और फिर हम कर्म करते हैं। स्वप्न में कर्म हो जाने के बाद सुबह उठ के हम बोलते हैं कि आज मैंने ये देखा। तो ये स्वप्न का दृष्टांत लेके पूरा मांडुक्य उपनिषद का वैत्यत्य प्रकरण जो है ये स्वप्न सृष्टि का उदाहरण लेके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई संकल्प से भी कुछ हो सकता है, उत्पत्ति हो सकती है। पूरी स्वप्न सृष्टि हम रोज उत्पन्न करते हैं, ये एक बात ख्याल में रखिए। पर शुरुआत के साधक के लिए संकल्प की बात आती है, परमात्मा ने सर्जन किया, सर्जन के बाद परमात्मा अंदर प्रवेश हो गए। तो भाई प्रवेश कैसे हो गए? ये फ्लावर है, ये पुष्प है, ये पुष्प के अंदर भीतर मुझे अभी भी प्रवेश करना है इसी क्षण, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये शरीर छोड़ के क्या सूक्ष्म शरीर प्राप्त करना पड़ेगा? कोई ऐसी विद्या, मुझे हठ योग सीखने चला जाना पड़ेगा कोई गुफा में, कोई गुरु के पास कि भाई हमें ये सिखा दीजिए ये विद्या कि मैं अंदर प्रवेश हो जाऊं। तो वेदांती गुरु बोलते हैं ऐसी मेहनत मत करो, मैं अभी आपको प्रवेश करवा देता हूं। कैसे? तो आपको इतना ही मानना है कि मैं ये फ्लावर हूं, बस बात खत्म हो गई, ये मेरा प्रवेश हो गया पुष्प में। अभी पुष्प के साथ जो होगा, ये पुष्प किसी के गले में पड़ा तो मैं मानूंगी अरे भाई मैं आपके गले में पड़ गई हूं, अब मैं गिरने वाली हूं, ओ मैं तो मुरझाने वाली हूं, ओ मेरी सुगंध तो ऐसी है, मुझे किसी ने पानी के फ्लावर वाज में डाल दिया। पुष्प के साथ जो जो होगा वो मेरे साथ होने लगेगा, इसके अंदर प्रवेश याने ये मैं हूं, बस ऐसे ही परमात्मा ने ये शरीर मन बुद्धि का संघात किया और उसमें प्रवेश किया। पर प्रवेश किया ऐसे कैसे किया कि ये मैं हूं, मैं का प्रवेश हो गया, यहां से ये जो अज्ञान जो है ये यहां से जुड़ गया परमात्मा की माया से, क्या हो गया? ये संघात के साथ जब परमात्मा की शक्ति मिल गई तो अविद्योपाधि जीव, ये एक 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 मैं की उपाधि क्या लग गई? बड़े मैं की उपाधि क्या है? बड़े अहम की उपाधि क्या है? माया। वही माया सैकड़ों टुकड़ों में, ये क्या है? एक मिरर है, एक कांच के, वो मिरर के मैं हजार टुकड़े कर दूं, मैं हजार टुकड़े कर दूं और मैं आके खड़ी रह जाऊं तो मैं कितनी दिखूंगी? हाँ, मैं हजार दिखने लगूंगी, पर हर मिरर मैं जो ये बाहर जो हूं ऐसी के ऐसी हर टुकड़े में नहीं दिखूंगी, उपाधि बदल जाऊंगी। मैं कैसी दिखूंगी हर मिरर में? जिसके जैसे टुकड़े, जैसा वजन, जैसी शाइनिंग। कोई टुकड़ा खराब होगा, कोई टुकड़ा दाग वाला होगा, कोई टुकड़ा एकदम स्वच्छ होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, उपाधिये बदलती है। एक ही प्रतिबिंब सब टुकड़े में है, ऐसे वो एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म हम सब में, हम ऐसे टुकड़े 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 हैं, हम सब में वो झलक रहा है। कैसे? देखिए, सब भिन्न टुकड़ों में हजार हम दिखते हैं, पर हजार में है कौन? हर एक हजार प्रतिबिंब बोलेगा तो क्या बोलेगा? वो एक ही मैं है, ऐसे एक ही अहम वृत्ति। पर क्या हो जाता है कि टुकड़े के अंदर का जो व्यक्ति है वो कैसा है? वो बोलेगा अरे भाई मैं तो इतना छोटा दिख रहा हूँ, मैं प्रतिबिंबित हूँ, मैं ऐसा छोटा दिख रहा हूँ, और आप बाहर जो भी कार्य कर सकते हैं, भीतर का टुकड़ा स्वतंत्र नहीं है कार्य करने में, इसीलिए लगता है कि जीव कैसा है भाई, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं अल्प शक्तिमान हूँ, मैं छोटा हूँ। तो उसे आके बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, जो तू है वही मैं हूँ, तेरी छोटी उपाधि निकाल ले, मेरी बड़ी उपाधि निकाल ले, तो अहम प्रत्यय से हम एक ही है। ऐसे ये परमात्मा सब जगह अहम वृत्ति से एक ही है। हम क्या समझना चाहते हैं कि प्रवेश किया वो कैसे किया? ये मैं हूँ। और करना क्या है? पूरी जिंदगी ये मैं हूं ऐसा जो प्रवेश से घटित हो गया वो जो घटित हो गया उसे प्रबोध समय यक साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एव अद्वयम। ये परमात्मा जो अहम वृत्ति से शरीर मन बुद्धि में प्रवेश कर गया वो परमात्मा क्या है, वो जो टुकड़ा जो है कांच का टुकड़ा, उसे जब समझ में आता है कि मैं ये जो भीतर जो अहम अहम मेरा छोटा हो रहा है वो सत्य नहीं है, मैं किसका प्रतिबिंब हूँ वो मुझे जानना चाहिए, तो मेरा प्रवेश किसने मेरे अंदर प्रवेश किया है उसका सच्चा ज्ञान जब से मुझे जब मुझे होगा तब मुझे पता लगेगा कि ये मैं शरीर मन बुद्धि की उपाधि नहीं हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। ये कैसे पता लगेगा? मात्र प्रबोध समय मात्र ज्ञान से। इसीलिए हम कहते रहते हैं ज्ञात्वातम मृत्युमत्येति नान्यः पंथा। ये इसलिए ये ज्ञान को इतना महत्व महात्म्य देते हैं, ये इसलिए क्योंकि उसके बिना आपको समझ में आने वाली बात नहीं है। तो उपनिषद का दृष्टांत इतना सुनने के बाद परमात्मा में थोड़ी श्रद्धा थोड़ा समझ में आने लगा तो हमारे दृष्टांत बदलते रहते हैं। अब मुंडक उपनिषद का दृष्टांत आया, यथोर्ण नाभि सृजते गृण्णते च। ये सब कुतर्क को यहाँ ये श्लोक में भेदन हो जाता है। हाँ, यथा पृथिव्याम, और आप सब उपनिषद के श्रवण किए हुए साधक है तो ज्यादा समझ में आएगा। यथोर्ण नाभि सृजते गृण्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती। यथा सत्पुरुषात् केशलोमानी तथा क्षरात संभवंती इह विश्वम। भई ये विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप पूछते ही है जानना ही है तो सुन लीजिए। उपनिषद कहते हैं यथोर्ण नाभि, जो मकड़ी होती है, गुजराती में उसको करोलिया कहते हैं, तो ये जो मकड़ी है वो लार से अपने ही पेट से अपने ही मुख से अंदर जो ग्रंथि होती है उससे एक तार निकालती है और वो पूरा जो उसका जाल है वो धीरे 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 करके बुनती है और उसी में वो स्थापित रहती है, सेंटर में रहती है। इसी प्रकार उसी में तो मटेरियल कहाँ से लाई वो मकड़ी, तो बोले खुद के अंदर से ही। हाँ, पर जाला जो बनाते हैं ये जाला बनाने का ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो बोले वो ज्ञान उसके भीतर ही था, कोई और की मदद लेनी नहीं पड़ी। भाई जैसे मकड़ी ने अपने ही भीतर से मटेरियल निकाल के जाला बुना, इसी प्रकार ये आकाश से लेकर ये पुरुष तक का जितना भी है झुंबण दिख रहा है वो परमात्मा में से ऐसे उत्पन्न हुआ। ये मकड़ी के दृष्टांत से इतना समझ लीजिए कि जो निमित्त कारण है वो उपादान भी हो सकता है, इतना ही आपको हमें समझाना है। बोले समझ गए। अच्छा, किम काय स खलु किम उपादान मिति। ज उपादान की बात हो गई, अब कहते हैं कि कैसी कौन सी काया से बनाया, तो उसके लिए यही श्लोक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। कौन सा? यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती। अच्छा, मकड़ी ने तो कर्म भी किया, दिख रहा है कि कर्म हो रहा है, और यहाँ तो परमात्मा को आप अकर्ता कहते हैं, कोई भी प्रकार का कर्म वह नहीं कर सकते, फिर भी उत्पत्ति बतानी है, तो उसके लिए दृष्टांत दिया यथा पृथिव्याम, जैसे पृथ्वी में धरा में औषधियां उग जाती है, घास जो उग जाता है, तो पृथ्वी पे चलेंगे पानी अपने आप जब आता है भेज होता है, तो जो बारिश के समय में बहुत सारी वनस्पतियां अपने आप उग जाती है। आपने बीज बोए क्या अंदर? हाँ, आपने तो बीज नहीं बोए, आपने लॉन भी उगाई होगी तो क्या होगा, उसमें कोई दूसरे प्रकार की भी घास उग जाती है और फिर उसको हम निकाल देते हैं, तो वो अपने आप स्फुरित हो जाती है, कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं, कर्म नहीं, किसी और का कर्म नहीं, और वो वनस्पति जैसे फूट जाती है जमीन में से, ऐसे ये विश्व उत्पन्न हुआ है, आप इतना ही ध्यान रखिए। अच्छा, किमी है किम काय, फिर कहते हैं किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च। अभी आधार क्या है, तो आधार के बारे में एक दृष्टांत देते हैं। जब ज्ञानी जन संत हमें समझाते हैं तब एक दृष्टांत दिया जाता है कि भाई हजारों मील ऊपर पक्षियां हम यहाँ जो देखते हैं वो ही इतने नहीं है, अब ऊपर हिमालय में जाइए, नारायण आश्रम में जाइए, तो बड़े पक्षी हैं वहाँ, बड़े बड़े हैं, तो वहाँ 9000 फीट पे वो आश्रम है और वो पक्षी तो उससे भी ज्यादा ऊपर उड़ रहा है, यानी ही इज फ्लाइंग एट द लेवल ऑफ 11000 या 10000, पर आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे, कैलाश मानसरोवर भी जाएंगे तो वहां भी पक्षी दिखेगा, तो वो पक्षी 18000 20000 की हाइट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था देखी है, वहां 18,000-20,000 पे सब जगह बर्फ ही होगा। बर्फ में अगर अंडा दे भी दिया तो सेवन कहां होगा, बर्फ के अंदर तो रख नहीं सकेंगे, ढक नहीं सकेंगे। तो ये जो पक्षियां ऊपर जो है उसके बच्चे अंडे में से निकलेंगे कैसे? हाँ, परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि वो पक्षी एकदम ऊंचे आकाश में उड़ता है 20,000-25,000 की हाइट के ऊपर, और वहां से अंडा जब देता है तो रास्ते में गिरते वो जो उसका पतन जो होता है नीचे आना होता है, ग्रेविटी से नीचे ही आएगा, पर नीचे आते 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 10,000-9,000 पे तो वो फूट जाता है। ये जो फोर्स होता है वो फोर्स ही उसके सेवन का कारण बन जाता है। ये फोर्स से जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा से वो फूट जाता है और पक्षी उड़ने लगता है। ये कितनी व्यवस्था है। धरती पे ऐसा हमें दिखा, धरती पे जरूर नहीं है क्योंकि बर्फ नहीं है, यहाँ व्यवस्था है, आराम से वो अंडा सेवन होगा और बाहर आएगा। वहां व्यवस्था नहीं है, सभी प्रकार की ऑक्सीजन भी कम है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए परमात्मा ने ये। तो भाई पक्षी का हमें क्या समझना है, हमें वो पक्षी के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, हमें ये समझना है कि भाई जैसे बिना कोई आधार अंडे में से बच्चा भी निकल सकता है, तो वो पक्षी और अंडे का आधार जो परमात्मा है वो बिना आधार क्या कुछ नहीं बना सकता, उसे आधार की जरूर है। तो बोले नहीं, उसे आधार की जरूर नहीं है। हाँ, अब समझ में आया कि सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे हो सकती है। आप इतना ही समझे कि हम हमारा प्रिय दृष्टांत लेकर उपस्थित हो जाते हैं। कौन से प्रिय दृष्टांत लेकर उपस्थित हो जाते हैं? जो बोले रज्जु सर्पवत ये उत्पत्ति हुई है, वो दृष्टांत बाद में। मैं आपको दृष्टांत की सीमाएं बताती हूँ। जैसे हमारा साधन का, हमारा साधन जैसे सशक्त हो जाता है, बुद्धि का साधन सूक्ष्म बुद्धि, ऐसे ये दृष्टांत बदलते रहते हैं। साधक को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एक दृष्टांत को लेकर जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि नहीं यहाँ ऐसा ही कहा है तो उत्पत्ति ऐसी ही होगी, यही कहते हैं तो ऐसी ही होगी। कभी साधक एक ही एक समझ लीजिए, साधक जिद्दी नहीं होता, जिद छोड़ दीजिए बस, तो ही आपको वो परमात्मा बहुत सरलता से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा में से ही ये सब उत्पत्ति हुई। और अब मांडुक्य उपनिषद आगे प्रवृत्त होकर बताती है कि हकीकत में उत्पत्ति हुई ही नहीं है। क्यों हुई नहीं है? जैसे स्वप्न सृष्टि निर्माण होती है, स्वप्न सृष्टि थोड़ी देर के लिए रहती है और चली जाती है, तो जागृत अवस्था में वो स्वप्न की कितने पदार्थ रहे आपके साथ? एक भी रहे नहीं। और उत्पत्ति हुई थी कि नहीं? उत्पत्ति तो हुई थी, दिख भी रही थी और हम उसमें एंजॉय भी कर रहे थे या दुखी भी हो रहे थे। उत्पत्ति दिख रही है तो हम और आप भी हमारे छोटे से संकल्प से, हाँ, हमारा संकल्प छोटा छोटा होता है, हमारी जो भी विषय की वासनाएं वृत्तियां होती है जागृत में जो भुगत नहीं सकते वो रात को हम भुगतते हैं। ये तो साइड वर्क है, ये तो बाई प्रोडक्ट है कि भुगती जाती है। मेन इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि दुखी हो या सुखी हो, स्वप्न जैसे भी आते हो उसकी बात नहीं, स्वप्न आते हैं या नहीं, यू आर दैट मिनी लॉर्ड, यू आर दैट परमात्मा। ये जो मन है, संकल्प करके पूरी सृष्टि आपके भीतर उत्पन्न होती है और उत्पत्ति का कार्य सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और मेरे भीतर कुछ उत्पन्न हो सकता है, तो नक्की वो मेरे भीतर जो अहम वृत्ति से जो परमात्मा जो प्राविश्य अनुप्राविश्य, हाँ, प्रकर्षण अनुप्राविश याने ये कोई दरवाजे में से आने वाला प्रवेश नहीं है, ये कोई विशिष्ट प्रकार का प्रवेश है। नक्की अब मैं मान रही हूँ कि मेरे भीतर भी वो परमात्मा का प्रवेश हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों मेरे में हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? संकल्प से हो रहे हैं। मटीरियल कहाँ? मेरा ही। उपादान मेरा ही, निर्माण मेरा ही, स्वप्न सृष्टि में जो भी निर्माण किया पूरी सृष्टि वो पूरी मेरी है। ओहो, मेरे में ही ये सब हो रहा है, मेरे में ही वो अहम वृत्ति से परमात्मा है। मैं ये अल्पज्ञ अल्प उपाधि वाली ये जीव जो जिससे समझती हूँ वो भी ये उत्पन्न कर सकती हूँ। परमात्मा का ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि रूप से भी अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया, उसको भी सपने आते हैं, वो भी उत्पन्न करता है। तो इमटीरियल ऑफ आइदर यू वेदर यू नो और डोंट नो, वो परमात्मा तो अंदर झृंबण हो ही रहा है। तो मेरा और आपके सचराचर कारण का समष्टि जो परमात्मा जो ब्रह्म है वो क्या ये उत्पन्न नहीं कर सकता, ये धारण नहीं कर सकता हमें? इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो हे परमात्मा, श्रद्धा से आपको न मानने वाले कुतर्क जो करते हैं वो आपके उत्पत्ति के बारे में ऐसे कुतर्क करते हैं। और ये स्तुति करके ये स्तोत्र से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा कुतर्क मेरे मन में कभी न आए। श्लोक नंबर 6। अजन्मानो लोकाः किमवयभवन्तोऽपि जगतां
भवविधिर्नाद्रत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दान् स्त्वान् प्र अमरवर संशेरत इमे।
वो कुतर्क श्री पुष्पदंत जी को इतना अखर रहा है। देखिए, जिसने जान लिया है वो सहन नहीं कर सकता कि मैं जो परमात्मा का उपास्य हूं, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, मुझे हर्ज नहीं है। साधक का ये दृष्टिकोण हमेशा रहना चाहिए। मुझे आप अल्प कह लीजिए चलेगा, पर मैं जिसको मेरा जो आराध्य देव है, मेरा जो उपास्य है, वो ब्रह्म है और वो बड़ा विराट है, बड़ा है, उसके बारे में तो कोई कम बोलेगा तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे बारे में कुछ भी बोलिए तो मुझे हर्ज नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर परमात्मा को ब्रह्म को जानने चले हैं तो जिसे आप जानते हैं उसकी गरिमा बनाए रखना।